नमस्कार भारत, 17 फरवरी दिन बुधवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। बजट सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जेएनयू विवाद की गूंज, सरकार बहस के लिए तैयार।
प्रधानमंत्री ने कहा जो सरकार के द्वारा जो भी करना चाहिए इस दिशा में हम जरूर करेंगे। मैं केवल बीजेपी का नहीं हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं।
पश्चिम बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी में लगे अफजल के समर्थन में नारे, तो लखनऊ में राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर कवायद तेज, पीडीपी और भाजपा में आज होगी बात, और ले चलेंगे आपको उर्दू जुबान के जश्न में। होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पत्रकारों और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे छात्रों की पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी विधायक ओपी शर्मा और कुछ वकीलों पर आरोप है कि उन्होंने पत्रकारों और छात्रों के साथ हाथापाई की। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि टीवी फुटेज में भाजपा विधायक शर्मा साफ तौर पर छात्रों पर हमला करते दिख रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाई सर्वदलीय बैठक में भी जेएनयू का मुद्दा ही छाया रहा। सरकार ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि वो संसद के बजट सत्र में इस पर बहस के लिए तैयार है। पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय नागरिक को जासूसी के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई गई है। भारत से 3 साल से लापता भारतीय नागरिक हामिद अंसारी को एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी का दोषी करार दिया है। आरोप है कि हामिद अंसारी साल 2012 में अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के कोहाट इलाके में घुसे थे, तब उन्हें पकड़ लिया गया था। रूस ने उस पर लगाए गए तुर्की के तमाम आरोपों से इनकार किया है। तुर्की ने आरोप लगाया है कि सीरिया में रूस युद्ध अपराधों में संलग्न है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि उत्तरी सीरिया के कई अस्पतालों और स्कूल में हुए मिसाइल हमलों में रूस का हाथ है। इन हमलों में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता मित्री पेस्कोव ने इन आरोपों को आधारहीन बताया। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाराखोवा ने कहा,
обвинения в адрес России, которые изначально изобретаются в Вашингтоне,
रूस पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब और तुर्की के लगाए गए तमाम आरोपों में कोई दम नहीं है। हैरानी की बात यह है कि अफगानिस्तान और यमन में अस्पतालों और आम नागरिकों पर हो रहे हवाई हमलों में शामिल ताकतें ही हम पर बेगुनाह लोगों को मारने का आरोप लगा रही हैं। ये थी रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाराखोवा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि सीरिया को लड़ाई में घिरे सभी शहरों तक राहत सामग्री पहुंचाने की अनुमति देनी चाहिए। फिलहाल सीरिया ने 7 ऐसे शहरों तक मानवीय सहायता की अनुमति दे दी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष दूत स्टेफान दे मिस्तूरा ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को सीरिया में संकट में फंसे हर एक शख्स तक पहुँचना ही होगा और ऐसा करने की अनुमति देना सीरिया की सरकार की जिम्मेदारी है। अमेरिका और क्यूबा ने एक ऐतिहासिक समझौता किया है जिसमें दोनों देशों के बीच 50 सालों में पहली बार व्यावसायिक उड़ानें शुरू होंगी। हवाना में हुए समझौते के तहत दोनों देशों के बीच रोजाना करीब 100 उड़ानें होंगी। बीबीसी समाचार।
तारीख 17 फरवरी दिन बुधवार। नमस्कार भारत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी नारेबाजी के आरोप में गिरफ्तारी को लेकर चल रहा विवाद नित नए मोड़ ले रहा है। सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में छात्रों और पत्रकारों की पिटाई का मामला भी तूल पकड़ रहा है। कल पत्रकारों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर सकता है। दूसरी ओर कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसमें भी जेएनयू विवाद ही हावी रहा। दिन भर के घटनाक्रमों पर सुशीला सिंह की रिपोर्ट।
जेएनयू में चल रहे विवाद की गूंज कल प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई राजनीतिक पार्टियों की बैठक में भी सुनाई दी। संसद के बजट सत्र से पहले बुलाई गई इस बैठक में विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री से इस मामले में संसद में बहस करने का इंतजार करने के बजाय हस्तक्षेप करने की मांग की। इस बैठक के बाद कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद का कहना था,
जो लोग इसमें शामिल नहीं थे उन्हें गलत तरीके से नहीं फंसाया जाना चाहिए, लेकिन जो शामिल थे उन्हें निश्चित रूप से सजा मिले। हमारी पार्टी भी इसका समर्थन करती है। सरकार को ये जानने की भी कोशिश करनी चाहिए कि ये सब शुरू कैसे हुआ।
उधर सरकार का कहना है कि वह इस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। संसद का बजट सत्र 23 फरवरी को शुरू हो रहा है। 2 घंटे तक चली इस बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने पत्रकारों को कहा कि विपक्ष ने इस बैठक में कई मुद्दों को उठाया, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहकर दिया कि वे प्रधानमंत्री केवल बीजेपी के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, जो सरकार के द्वारा जो भी करना चाहिए इस दिशा में हम जरूर करेंगे। मैं केवल बीजेपी का नहीं हूँ, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ।
इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। उधर कल जेएनयू के शिक्षकों ने छात्रों के कक्षाओं के बहिष्कार करने का समर्थन किया। ये छात्र जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार का देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में पत्रकारों से सोमवार को हुई मारपीट के मामले में विरोध जताने के लिए पत्रकारों ने बड़ी संख्या में मार्च निकाला। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना था,
पत्रकारों को जिस प्रकार मारा गया कोर्ट में वो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, और हम इसको कंडेम करते हैं। हर कॉलेज में आरएसएस का वाइस चांसलर बैठाया जा रहा है, और जो स्टूडेंट्स का एक्सप्रेशन है, जो उनके दिल की बात वो बोलना चाहते हैं, उसको दबाया जा रहा है।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में पत्रकारों से हुई मारपीट के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। जहां एक और जेएनयू का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं बजट सत्र के हंगामेदार होने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया और येल यूनिवर्सिटी समेत दुनिया भर के कई चर्चित विश्वविद्यालयों के शिक्षक जेएनयू के शिक्षकों और छात्रों के समर्थन में सामने आए हैं। इन विश्वविद्यालयों के 455 प्रोफेसरों और अन्य शिक्षाविदों ने एक बयान में जेएनयू में पुलिस कार्रवाई को गैर कानूनी बताया है। इनमें से कई जेएनयू के पूर्व छात्र भी हैं।
इस बीच पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगे और वहां के छात्रों ने जेएनयू की घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। उधर इस विवाद की गूंज कल लखनऊ में भी सुनाई दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और वामपंथियों के खिलाफ अपना गुस्सा उतारा और उनके पुतले फूंके। भाजपा के इन युवा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसे झूठी बात को सच साबित करने की भाजपा की कोशिश बताई। एक रिपोर्ट के साथ हैं लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जेएनयू के छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करना यूपी भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। कार्यकर्ताओं ने पहले नारेबाजी की, पुतले फूंके और सड़क जाम कर दिया। इनके निशाने पर राहुल गांधी के अलावा वामपंथी लोग भी थे। प्रदर्शनकारियों ने अफजल गुरु के खिलाफ भी नारे लगाए और हाथों में बैनर लहराए। यही नहीं, इन कार्यकर्ताओं को ये भी लगा कि राहुल गांधी को इलाज की जरूरत है, सो उनके लिए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से एक कार्ड भी बनवा डाला। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव अभिजात मिश्रा ने बताया,
राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, तो हम लोगों की तरफ से है कि राहुल गांधी या तो मानसिक रूप से बीमार है, देश के खिलाफ नारेबाजी जहां पर भारत के खंड खंड करने की बात चल रही हो, जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हो, जहां पर देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, उन लोगों के लिए दिलचस्पी दिखा रहा है, उन लोगों को समर्थन दे रहा है, उन लोगों के बीच में जा करके उन लोगों को खत्म कर रहा है।
हालांकि राहुल गांधी का कार्ड बनाने को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 2 कर्मचारियों के खिलाफ बाद में कार्रवाई भी की। राहुल गांधी कल लखनऊ आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उनके विरोध को भाजपा का षड्यंत्र बताया है। पार्टी का कहना है कि इस मामले में जानबूझकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को देशद्रोहियों का समर्थक बताने की कोशिश की जा रही है। पार्टी प्रवक्ता VS मदान कहते हैं,
जो भारतीय जनता पार्टी का मूल संगठन है RSS, उनको झूठ बोलने में महारत हासिल है, और एक झूठ को वो 100 बार बोलकर वो ये मान लेते हैं कि हम जनता के बीच इसको सच बना देंगे। उसी फार्मूले पे ये तो राहुल गांधी साहब ने या कांग्रेस के नेताओं ने पहले दिन से कहा है कि जिन लोगों ने देश के खिलाफ नारे लगाए हैं, जिन लोगों ने अफजल गुरु के हक में नारे लगाए हैं, कोई भी उनके साथ नहीं है, किसी को उनके साथ नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ कानून में जो भी प्राविधान है उनमें उचित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा बिना वजह को घेरने का प्रयास कर रहा है।
दरअसल JNU में कथित देश विरोधी नारेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किए गए छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के मामले में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार शैक्षिक संस्थाओं पर अपनी विचारधारा थोपना चाहती है। राहुल गांधी कन्हैया कुमार के समर्थन में चल रहे प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे, जहाँ उन्हें छात्रों के एक वर्ग के विरोध का भी सामना करना पड़ा था।
और चलिए अब जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अखबार JNU की घटना को कैसे देख रहे हैं। प्रभात पांडे इन अखबारों के इंटरनेट संस्करणों को खंगाल कर स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। जी प्रभात
जी, पंकज जी, विदेशी मीडिया में भी JNU की घटना और कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी को खासी कवरेज मिल रही है। द वॉशिंगटन पोस्ट में इस पूरी घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि JNU में हुए इस वाक्य के बाद से भारत में लोकतंत्र, देशद्रोह और कैंपस राजनीति पर एक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि JNU छात्र की देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी से भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। वहीं द गार्डियन ने कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी पर JNU और भारत के जो बाकी विश्वविद्यालय हैं उनमें जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उनको प्रमुखता से छापा है।
तो अब ये भी बता दीजिए कि भारतीय अखबार आज क्या कह रहे हैं।
देखिए, भारतीय जो अखबार हैं उनमें उनकी सुर्खियाँ भी JNU ही बना हुआ है। द हिंदू की पहली खबर है, ओपोजिशन वॉन्ट्स PM टू इंटरवीन इन JNU क्राइसिस। कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र और इस मुद्दे पर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसका जिक्र है, और इसमें एक बहुत बड़ा मज़ेदार सा एक फोटो छपा हुआ है, वो मैं दिखाना चाहूँगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने मोबाइल पर वो क्लिप दिखा रहे हैं जी, और बहुत ही ध्यान से, जो कि संसद में और बाकी जगहों पर विपक्षी नेता बहुत जोर शोर से विरोध करते हैं।
और उसमें दिख रहे हैं डी राजा, गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा, बहुत ध्यान से
वो क्लिप देख रहे हैं और काफी उनमें एकजुटता सी लग रही है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने शीना केस जो है उसमें CBI के हवाले से ये दिया है कि CBI चार्जेस पीटर विथ मर्डर कॉन्स्पिरेसी, जिसमें CBI ने दावा किया है कि पीटर मुखर्जी को साल 2008 से इस केस के बारे में सब कुछ पता था
जी।
इसके अलावा पंजाब केसरी में भी JNU की खबर है और विधानसभा उपचुनाव के जो नतीजे हैं उनका जिक्र है। दैनिक भास्कर में भी विधानसभा उपचुनाव का जिक्र है और एक बड़ी मज़ेदार सी खबर है जिसमें कि जो सिखों के चुटकुलों पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ही पूछ लिया कि भाई आप हमें उपाय बताइए इन पे कैसे हम रोक लगा सकते
हैं, क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका। और अब चर्चा जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में पिछले 47 दिनों से सरकार के गठन को लेकर जमी बर्फ को पिघलाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव आज जम्मू कश्मीर में हैं, जहां वे PDP के प्रमुख महबूबा मुफ्ती के साथ साथ अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर यूनिट के मुखिया सतपाल शर्मा ने राम माधव के जम्मू कश्मीर दौरे की पुष्टि करते हुए बताया कि पार्टी ने उनको जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन के लिए अधिकारित किया है और आज वो इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। उन्होंने BBC को बताया,
ऐसा है कि राम माधव जी पार्टी ने डिक्लेयर किया है और मोस्ट लाइकली उनका टूर बन रहा है यहाँ आने का।
तो क्या गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से उनका टूर कल बन रहा है?
हाँ, उनका गवर्नमेंट बनाने के हवाले से और PDP के लीडरों से महबूबा मुफ्ती से बात करने का उनका टूर प्लान होगा।
तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के पिछले महीने निधन के तीसरे दिन बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, जिसके बाद से अभी तक PDP और BJP सरकार का गठबंधन दोबारा तय नहीं हो पा रहा है। आज होने वाली बैठक के हवाले से अगरचे किसी भी PDP नेता ने इस मुद्दे पर खुलकर बात करने से इनकार किया, तहम PDP के नजदीकी हलकों का कहना है कि PDP को BJP के साथ सरकार के गठन पर बात करने में कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ PDP के नेता 11 महीने पहले बने एजेंडा ऑफ अलायंस अमलाने और आश्वासन देने की जोरदार मांग BJP से करेंगे। तहम विश्लेषक मानते हैं कि इस सब के बावजूद दोनों ही जमातों के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो गठबंधन को आगे बढ़ाएं। पत्रकार और विश्लेषक परवेज मजीद कहते हैं,
मुफ्ती साहब के देहांत के बाद पहली बार पार्टी लेवल पर ऑफिशियल लेवल पे इस हवाले से बात हो रही है, तो देखना होगा कि क्या तय होगा। जिस ब्लैंक पे उन्होंने लोगों से वोट मांगे हैं, एक साल सैंपल है, एक नमूना रहा, एक साल कि उस एजेंडा ऑफ अलायंस जिसको कहा जा रहा है उस पर कितना अमल हुआ। तो ये सारा जो कुछ मंजर है अभी बिल्कुल अनसर्टन है, लेकिन जिसको हम वो कहते हैं ना मुहावरा दो धारी तलवार, हुकूमत बनाते हैं तब भी उनके लिए चैलेंजेस हैं, नहीं बनाते हैं तब भी चैलेंजेस हैं।
इस वक्त बीजेपी के पास 28 विधायक हैं जबकि बीजेपी के पास 25 हैं। सरकार को गठन करने के संकट को क्या आज की ये बैठक दूर करने की एक कामयाब कोशिश साबित हो सकती है, इसका सबको इंतजार है। माजिद जहांगीर, बीबीसी हिंदी, श्रीनगर।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब चर्चा कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने कल वहां की संसद को संबोधित करते हुए अपने भारत दौरे के बारे में जानकारी दी। वे अपनी यात्रा 19 फरवरी से शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने बात की नेपाल में बीबीसी संवाददाता संजय ढकाल से।
उन्होंने पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए बताया कि फ्राइडे से अपनी पहली भारत भ्रमण कर रहे हैं, मतलब उनकी ये पहली विदेश भ्रमण भी है अपनी प्राइम मिनिस्टर जो वो 4 महीने पहले हुए थे। उसकी सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव वो बता रहे थे कि हाल ही में जो नेपाल भारत के रिश्ते में कुछ असहजता बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे उसको सुधारना का सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा। और वो बोल रहे थे कि वो चाहते हैं कि इस भ्रमण से वो सब असमझदारी खत्म हो।
हमें भारत संग मित्रतापूर्ण संबंध अगाड़ी बढ़ाना चाहन्छौं। मित्रतापूर्ण संबंध अगाड़ी छदै छ हाम्रो।
वो बोल रहे थे कि जो भारत और नेपाल के बीच मित्रतापूर्ण संबंध में कुछ असमझदारी दिख रहे हैं वो उनको मतलब पूरी तरह से कुछ असमझदारी के तहत ये असहजता उत्पन्न हुई है और उसको खत्म करना चाहते हैं और नए ढंग से पारस्परिक लाभ के आधार पे संबंध को आगे ले जाना चाहते हैं। और इसके लिए वो इंडिया में पॉलिटिकल लेवल में प्राइम मिनिस्टर से लेके मतलब पॉलिटिकल लीडर्स से इसमें बात करेंगे और वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल सर्किट हैं और बिजनेस कम्युनिटी उस सबके साथ अपने संबंध सुधार के मैसेज लेके जाना चाहते हैं, ऐसे वो बोल रहे थे आज।
वहीं अगर देखा जाए तो भारत और नेपाल के बीच तनाव की मुख्य वजह जो है मधेसी आंदोलन माना जाता है, क्योंकि नेपाल का आरोप है कि भारत समर्थन कर रहा था मधेसी आंदोलन को और उसने ब्लॉकेड में भी वहाँ पर भूमिका निभाई थी, ये नेपाल का आरोप रहा है। तो अब ये ब्लॉकेट तो खत्म हो गया है, मधेसी आंदोलन को लेकर क्या रुख रह सकता है, क्या ओली इस पर भी भारत से चर्चा करेंगे?
ये मतलब एक अहम सवाल है। उन्होंने जो पार्लियामेंट को संबोधन किया था उसमें भी इसका जिक्र किए प्रधानमंत्री ओली ने। उसने वो बता रहे थे कि मतलब वो भारत भ्रमण जाने से पहले मतलब 2 दिन बाकी है अभी उसी मतलब फ्राइडे से पहले वो मधेसी आंदोलनकारी सख्ती से मिलके एक पॉलिटिकल मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं जिससे कम से कम मतलब 3 महीने में जो प्रोविंशियल बाउंड्री का जो मार्ग है मधेसी आंदोलनकारियों का उसको ये पॉलिटिकल मैकेनिज्म में थोरोली स्टडी करके उसमें क्या हो सकता है, उससे क्या कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करके 3 महीने बाद सहमति के आधार में संशोधन करने के लिए मतलब तैयार दिख रहे थे। और ये बात उन्होंने संबोधन में भी की है।
पाकिस्तान में एक सैनिक अदालत ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिक हामिद निहाल अंसारी को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के बाद उन्हें पेशावर के सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। हामिद अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के साथ हैं पेशावर से रिफतुल्ला औरकजई।
अदालत की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद मुलजिम हामिद निहाल अंसारी को सेंट्रल जेल पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। सरकारी जराए का कहना है कि मुलजिम को 2 दिन पहले पेशावर में एक फौजी अदालत की तरफ से जासूसी के इल्जाम में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुलजिम को आर्मी एक्ट के तहत सजा के खिलाफ अपील दायर करने का हक हासिल है। सरकारी जराए के मुताबिक मुलजिम हामिद निहाल अंसारी ने तफ्तीश के दौरान इस बात का एतराफ किया है कि वो गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान से तुरखम के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए और उनकी आमद का मकसद जासूसी करना था। ये भी बताया जाता है कि मुलजिम की कब्जे से हसास नवीयत की नक्शे और कुछ दिगर दस्तावेजात भी बरामद की गई हैं। मुलजिम ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए फेसबुक पर 7 अकाउंट्स खोल रखे थे जबकि उन्होंने 30 के करीब ईमेल पति भी बनाए हुए थे। بتایا جاتا ہے کہ ملزم کو پولیس اور حساس اداروں نے 3 سال قبل کوہاٹ سے حراست میں لیا تھا، جس کے بعد سے وہ لاپتہ تھے۔ ملزم کی والدہ فوزیہ انصاری کی طرف سے اپنے بیٹی کی بازیابی کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں حب سے بجا کی درخواست بھی دائر کی گئی، جس پر گزشتہ ماہ وزارت دفاع کی جانب سے جواب داخل کیا گیا۔ جواب میں کہا گیا تھا کہ ملزم حامد نہال انصاری کو پاکستانی فوج نے گرفتار کر رکھا ہے اور اس کے خلاف فوجی عدالت میں کاروائی چل رہی ہے۔ حامد نہال انصاری کی عمر 31 سال کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے اور وہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں۔ ملزم کی والدہ کا دعویٰ ہے کہ ان کے بیٹی کی چند پاکستانی شہریوں سے دوستی تھی، جنہوں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ بغیر ویزے کے افغانستان کے راستے سے پاکستان آ سکتے ہیں۔ ان کی والدہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کی بیٹی کی انٹرنیٹ پر ایک پاکستانی خاتون سے بھی دوستی ہو گئی تھی، جس سے ملنے کے لیے حامد نہال پاکستان گئے تھے۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ ملزم کی والدہ کی طرف سے سپریم کورٹ کی انسانی حقوق کی سیل میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں ان کے بیٹی کی بازیابی کی استدعا کی گئی تھی۔ تاہم بعد میں عدالت عظمیٰ کے سیل نے یہ درخواست جبری گمشدگی کے کمیشن میں اس حکم کے ساتھ بھیج دی تھی کہ حامد نہال انصاری کی بازیابی کے سلسلے میں تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جائے اور اس سلسلے میں ان کے لاپتہ ہونے کے ایف آئی آر بھی درج کی جائے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
تو بھارتی ناگرک حامد نہال انصاری کو جاسوسی کے آروپ میں پاکستان میں 3 سال کی قید ہوئی، اور اب جان لیتے ہیں کہ دیش اور دنیا کی کن ہلچلوں پر رہے گی ہماری نظر۔
دلی کے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پترکاروں اور چھاتروں کی پٹائی کے معاملے میں سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوگی۔ مہاراشٹر کو سوکھا مکت راجیہ بنانے کی دشا میں راجیہ کی بھاجپا سرکار کے جلیکت شیور ابھیان کی گھوشنا بھی آج ہو سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھینیتا عامر خان کو راجیہ سرکار اس ابھیان کا برانڈ ایمبیسڈر بنا سکتی ہے۔ جرمن چانسلر اینگیلا مرکیل یوروپیہ سنگ میں برٹین کو بنائے رکھنے کے پریاسوں پر جرمنی کی بھومیکا سنسد کے سامنے آج رکھ سکتی ہیں۔ سیریا کو لے کر ترکی اور روس کے بیچ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، اس پر بھی ہماری نظر ہوگی۔ ترکی کی سیما کے پاس ہزاروں شرنارتھی جمع ہو رہے ہیں، امریکہ نے دونوں دیشوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے۔ اس کے علاوہ تھائی لینڈ کی پورو پردھان منتری ینگلک چناواٹ کی وتیہ انیمتتا سے جڑے ایک معاملے میں آج پیشی ہوگی، اگر وہ دوشی پائی جاتی ہیں تو انہیں 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔
رس ٹپکتا ہے تیرے ہونٹوں سے، تو تو اردو زبان لگتی ہے۔ کچھ اسی احساس کے ساتھ پچھلے دنوں دلی میں اردو شاعری کے جشن کا آیوجن ہوا۔ جشن ریختہ میں بھارت اور پاکستان کی کئی نامور ہستیاں اس جشن میں موجود تھیں۔ اس کارکرم میں نامی گرامی لوگ تو آئے ہی، یوا پیڑھی کی دلچسپی بھی دیکھنے لائق تھی۔ اردو زبان کے اس جشن سے آپ کو روبرو کرا رہے ہیں سہیل حلیم۔
غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔
یہ اردو زبان کا جشن تھا۔ گوپی چند نارنگ، انور مقصود، جاوید اختر، گلزار، یہاں ساہتیہ کی دنیا کی بہت سی بڑی ہستیاں موجود تھیں اور وہ زبان کے حسن اور اس کی باریکیوں سے سننے والوں کا دل جیتتے رہے۔ ہندوستان میں اردو زبان کا استعمال کم ہو رہا ہے اور عام طور پر گھروں میں بولی جانے والی زبان بھی بدل رہی ہے۔ گلزار مانتے ہیں کہ نوجوان نسل کا اردو لپی سے دور ہو جانا اردو پر بھاری پڑ رہا ہے۔
اردو اسکرپٹ کو پاپولرائز کرنا چاہیے، وہ بہت اٹریکٹیو ہے، بہت خوبصورت ہے، ویری آرٹسٹک اسکرپٹ۔ لیٹ اٹ بی سین، لیٹ دس اسکرپٹ بی سین۔ اردو اسکرپٹ از اے ویری بیوٹیفل اسکرپٹ۔ زبان اگر وقت کے ساتھ، کوئی بھی زبان اگر وہ بدلے گی نہیں، تو وہ کلاسک کر کے تاک میں رکھ دی جائے گی۔
کوشش زبان کو زندہ رکھنے کی ہے۔ یہ شعر و ادب کی محفل ہے، یہاں سے کوئی پیاسا نہ لوٹے۔
چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل۔
یہاں قوالی بھی ہے، مشاعرہ بھی، غالب اور منٹو کی مہانتا کا ذکر بھی، مستر خیرآبادی کے کھوئے ہوئے کلام سے تعارف بھی. لیکن ہندوستان میں اردو کے سامنے آزمائشیں بہت ہیں اور کوئی صاف راستہ نظر نہیں آتا. جاوید اختر:
دیکھیے چیلنج یہ بدنصیبی سے آج سب زبانوں کو ہو گیا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جو ہماری ورنکولر ہے, جو مقامی زبانیں ہیں, وہ مڈل کلاس اپر مڈل کلاس پڑھ ہی نہیں رہے. اور اب کون کتنا کس کا ذمہ دار ہے اس بحث پہ, وہ لمبی بحث ہے. لیکن ایک اچھی خاصی ایک ہندوستانی زبان جو پروگریسو ہے بائی ٹیمپرمنٹ, جو سیکولر ہے, جو فارورڈ لکنگ ہے, وہ زبان ایک باؤنڈر میں آ گئی. اب چونکہ وہ پڑھائی نہیں جاتی تو وہ اس کی جو لپی ہے, اس کی جو اسکرپٹ ہے, وہ پڑھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن کیونکہ زبان ہے کمال کی خوبصورت اور اس میں بہت گن ہے, تو وہ اس سے محبت کرنے والے پڑھ رہے ہیں. تو آج آپ دیکھیے کہ دیوناگری میں جو اردو پوئٹری چھپتی ہے, اردو لٹریچر چھپتا ہے, وہ بے پناہ بکتا ہے.
مشہور ساہتیہ کار شمیم حنفی کہتے ہیں کہ ہندوستان کے بٹوارے کے بعد اردو سیاست کا شکار ہو گئی.
مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہر چیز پست اور ذلیل ہو جاتی ہے. یہ جملہ میرا نہیں ہے, یہ جملہ آندرجیت کا ہے. اس نے کہا تھا ہر چیز ذلیل ہو جاتی ہے جب سیاست اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے. تو اردو کے ساتھ بھی معاملہ یہی پیش آیا کہ اردو سیاست کا شکار ہو گئی. اردو کو پاکستان بننے سے, اور اردو کو کہنا چاہیے کہ ایک قوم سے وابستہ کر دیا گیا. واقعہ یہ ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان صرف نہیں ہے, واقعہ یہ ہے کہ اردو ایک مشترکہ کلچر کی, ایک روادارانہ کلچر کی یادگار ہے.
لیکن جشن ریختہ کوئی روایتی محفل نہیں, اور یہاں آنے والے زبان کے صرف روایتی چاہنے والے نہیں. تین روزہ جشن میں بڑی تعداد میں نوجوان بھی نظر آئے.
بڑا نیا نیا میرا انٹرسٹ پیدا ہوا ہے اردو لینگویج میں. پرانی کوئی اتنی میری نالج ہے رہی نہیں کبھی, تو کافی اچھی لینگویج ہے, کافی تہذیب والی لینگویج ہے, کافی کم شبدوں میں ایک شبد کے اکارڈنگلی کافی زیادہ کہنے والی لینگویج ہے, کافی زیادہ ایکسپریسو لینگویج ہے. تو مجھے کافی اچھا نیا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اندر.
اردو ایک ایسی زبان ہے جو آپ کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے, بہت کھینچتی ہے اپنی طرف, اور اس کی جو گہرائیاں ہیں شبدوں کی وہ شاید کسی اور زبان میں نہیں ملتی ہیں.
باہر ایک مسکنسیپشن ہے کہ اردو جو ہے پرانی لینگویج ہے, بڑے لوگ زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. ہم جیسے نوجوان بھی کافی انٹرسٹڈ ہیں آج کل اس لینگویج میں.
یہی ریختہ کا سندیش ہے, منزل دور ہے اور راستہ مشکل, لیکن آتی ہے اردو زبان آتے آتے. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
اور ان میں بھی وہی ایک لمحہ جس میں دو بولتی آنکھیں چائے کی پیالی سے جب اٹھیں تو دل میں ڈوبیں, ڈوب کے دل میں کہیں آج تم کچھ نہ کہو, آج میں کچھ نہ کہوں, بس یوں ہی بیٹھے رہیں ہاتھ میں ہاتھ لیے, غم کی سوغات لیے, گرمیے جذبات لیے, کون جانے کہ اسی لمحے میں دور پربت پہ کہیں برف پگھلنے ہی لگے.
آج تم کچھ نہ کہو, آج میں کچھ نہ کہوں, بس یوں ہی بیٹھے رہے ہاتھ میں ہاتھ لیے, غم کی سوغات لیے. اور اب سمے آ گیا ہے کاریکرم کے انت میں مکھیہ سماچاروں کا.
بی بی سی سماچار. دلی کے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پترکاروں اور چھاتروں کی پٹائی کے معاملے میں سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوگی. بھارتی جنتا پارٹی کے ودھایک او پی شرما اور کچھ وکیلوں پر آروپ ہے کہ انہوں نے پترکاروں اور چھاتروں کے ساتھ ہاتھاپائی کی. پاکستان سے آ رہی رپورٹ کے مطابق ایک بھارتی ناگرک حامد انصاری کو جاسوسی کے آروپ میں 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے. روس نے اس پر لگائے گئے ترکی کے تمام آروپوں سے انکار کیا ہے. ترکی نے آروپ لگایا ہے کہ سیریا میں روس یدھ اپرادھوں میں سنلگن ہے. سنیکت راشٹر سنگھ نے کہا ہے کہ سیریا کو لڑائی میں گھرے سبھی شہروں تک راحت سامگری پہنچانے کی انومتی دینی چاہیے. فی الحال سیریا نے 7 ایسے شہروں تک مانویہ سہایتا کی انومتی دی ہے. امریکہ اور کیوبا نے ایک ایتہاسک سمجھوتا کیا ہے جس میں دونوں دیشوں کے بیچ 50 سالوں میں پہلی بار ویوسائک اڑانیں شروع ہوں گی. فرانس کے پورو راشٹرپتی نکولاس سارکوزی پر چناؤ پرچار کے دوران وتیہ گڑبڑیوں کے معاملے میں جانچ شروع ہو گئی ہے. پیرس میں جانچ مجسٹریٹ نے ان سے سال 2012 کے چناؤ پرچار کے دوران اس بارے میں سوال جواب کیے. BBC समाचार।
और इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यही खत्म होता है। स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, पंकज प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए। अब से ठीक एक घंटे बाद 8 बजे विश्व भारती में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।